आज बुध की रात है। मैंने कल शाम वादा किया था और कह रहा था, अगर खुदावंद की मर्जी हो तो आज रात मैं इस उन्वान पर बात करूंगा, दीवार पर लिखा हुआ निविष्टा। ये गहरी बात है। हम इस मौजू पर हफ्तों लगा सकते हैं और फिर भी सतह को छू नहीं सकते हैं, लेकिन मैं रूहुल कुद्दस की मदद से आज रात इसका थोड़ा सा खाका पेश करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं दानियल के 5वें भाग की 25वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ, और इसमें यूं लिखा है, और जो अल्फाज लिखे गए थे वो ये हैं, मन्ने मन्ने तकीलो फरसीन। और अब खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत नाजिल फरमाए। मेरा ख्याल है हमारे अच्छे भाई जो यहाँ नगरान हैं, वो इन तेज रोशनियों को बंद कर दें। मैं क्योंकि ये इस तरफ बहुत तेज चमक रही है, मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया। मैं जमात को नहीं देख पा रहा था क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे बात करते हुए उनके चेहरे की तरफ देखना पसंद है। इससे यूँ महसूस होता है कि ये लोगों से जाती तौर पर राब्ता करना है। आज रात हम खुदावंद पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि हम वक्त निकाल कर इस मतन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये एक बेहतरीन मतन है और ये एक बशारती उन्वान है जो कि इलाही शिफा के लिए नहीं है, लेकिन ये सबसे अजीम तरीन इलाही शिफा के लिए है। सबसे ज्यादा बीमार बदन जिसके मुतालिक मैं आज रात जानता हूँ, वो हमारे खुदावंद यीशु का रूहानी बदन है जो जमीन पर मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा टूटा हुआ और बिखरा हुआ है, और यकीनन इसे इलाही शिफा की जरूरत है। अब हमारे मतन का आगाज आज रात बाबल से होता है, और बाबल सबसे पहले सुनार में वाकया था जो अभी तक है, और बाबल को सबसे पहले खुदा का दरवाजा कहा जाता था, बाबल, और बाद में वो बाबल कहलाया जिसका मतलब है उलझन। और बाबल बाइबल में सबसे पहले हमें पदेश में नजर आता है, और फिर ये हमें बाइबल के दरमियान में नजर आता है, और फिर आखिरी किताब मुकाशवा में नजर आता है, और फिर ये पूरी बाइबल में नजर आता है, इसलिए इसे आज भी मौजूद होना चाहिए। और हर वो चीज जो आज जमीन पर मौजूद है, जैसे रूहानी चीजें मौजूद हैं, जैसे खुदा की रूह और शैतान की रूह है, और तमाम फिरके और हर वो चीज जो आज हमारे पास दुनिया में मौजूद है, उसका आगाज पदेश में हुआ था। पदेश का मतलब है आगाज, और वो तमाम चीजें आज किसी और नाम और किसी और शक्ल में मौजूद है, लेकिन रूह वही है जिसका आगाज पदेश में हुआ था। इसी तरह है, ये बिल्कुल एक दरख्त की तरह है जो बढ़ता बढ़ता अब काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है, लेकिन अब ये अपने अरूज पर जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे खुदा की अदालत में जाना है जहां तमाम चीजों का हिसाब होगा, और हर चीज जिसका आगाज हुआ है उसका इख्तिताम भी होगा। बस वो चीजें जिनका आगाज नहीं हुआ था उनका इख्तिताम भी नहीं है। यही वजह है कि एक नए सिरे से पैदा शुदा मसीह का इख्तिताम नहीं है, क्योंकि उसके पास अबदी जिंदगी है, और अबदी जिंदगी खुदा की अपनी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि खुदा अबदी है। और यूनानी का एक लफ्ज है जुई, जिसका मतलब है खुदा की जिंदगी। जब यीशु ने फरमाया और कहा था, मैं तुम्हें अबदी जिंदगी देता हूँ, तो इसी लफ्ज का इस्तेमाल किया था। इसलिए जब एक शख्स नए सिरे से पैदा होता है तो उसकी रूह बदल जाती है और वो खुदा का हिस्सा बन जाता है, यहाँ तक कि वो खुदा का बेटा बन जाता है, और फिर वो उसी तरह से अबदी है जैसे खुदा अबदी है, क्योंकि वो खुदा का हिस्सा है। अपनी पदेश यानी रूहानी पदेश के वसीले ऐसा होता है। अब बाबल की बुनियाद नमरूद नामी एक शख्स ने रखी थी जो कि हाम का बेटा था। वो एक बहुत शरीर आदमी था, और बाबल कभी दुनिया का दारुल हुकूमत था। जब ये बड़ा शहर वहाँ तामीर किया गया था तो इसके चौगिर्द छोटे छोटे काफी शहर थे, और चारों तरफ वाले इस बड़े शहर बाबल को खराज और टैक्स और बाकी चीजें अदा किया करते थे। और अगर आप वहाँ के बारे में कदीम किताबों को पढ़ें, जैसे असलूब की दो बाबल है और बहुत सी कदीम तारीखी किताबें हैं, तो आप देखेंगे उनके यहाँ अजीबोगरीब अकायद पाए जाते थे। वहाँ एक औरत थी जिसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें काफी फैली हुई थी और जमीन में से निकली हुई थी और उन्हें देवता बना लिया गया। ये कहा जाता है कि यही वो बुत थे जो यकूब के सुसर के घर से आए थे, उनमें से कुछ जड़ों वाले देवता थे और वगैरह वगैरह। बस यही वो जड़ें थी जो यहाँ से निकलकर फिर मुख्तलिफ निजामों में फैल गई और वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप इनकी फितरत पर गौर करें और फिर आज की चीजों की फितरत पर गौर करें, तो इनकी फितरत एक जैसी नजर आएगी। बस बाबल वहाँ उस बड़ी जरखेज वादी में मौजूद था और ये आप पाशी से घेरा हुआ था और दरियाए फरात और दजला के पास था और ये एक बहुत बड़ा जरई मरकज था और बाबल एक अजीम शहर था और ये तकरीबन 120 मील तक शहर के चौगिर्द फैला हुआ था, हर तरफ से 30 मील था। इस तरह ये 120 मील बन जाता है। लोग कहते हैं कि बाबल शहर की सड़कें तकरीबन 200 फीट तक चौड़ी थी और इसकी दीवारें 80 फीट मोटी और तकरीबन 200 फीट ऊंची थी। वो लोग इन दीवारों के ऊपर रथों की दौड़े लगाते थे और इसके फाटक पीतल के बने हुए थे और वो फाटक भी तकरीबन 200 फीट चौड़े थे। और शहर के ऐन बीच में एक महल बना हुआ था और उसी महल में तख्त था और शहर के बीच में से अजीम दरियाए फरात गुजरता था। अगर आप इस पर गौर करें तो ये अबलीस का शहर था, क्योंकि ये खुदा के शहर के नक्शे पर बनाया गया था। जैसे खुदा के तख्त के सामने जिंदगी का दरिया बहता है और शहर में दीवारों के साथ साथ झूमते हुए बागात भी मौजूद थे और उस वक्त ये बहुत बड़ा और ताकतवर देश बन गया था, यहाँ तक कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और पूरी दुनिया इन्हें खराज पेश करती थी। इसके अलावा इसने साइंस में भी तरक्की कर ली थी और इसके पास जदीद तरीन चीजें थी जो साइंस ने बनाई थी। इसके पास जदीद तरीन रथ और जदीद तरीन डिजाइन थे, सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार और बेहतरीन दांतें थी और बाकी सारी दुनिया से ये मुमताज था। और फिर इन दीवारों के अंदर उस वक्त का बादशाह या उस वक्त का हुक्मरान बिलतशज़र रहता था, जिसके मुतालिक हम आज रात बात कर रहे हैं। बिलतशज़र बादशाह के मुतालिक बाइबल फरमाती है, नबूकदनज़र उसका बाप था, लेकिन हकीकी तौर पर नबूकदनज़र बादशाह उसका दादा था, जो कि बाद में बादशाह बन गया था। और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, नबूकदनज़र गैर कौमों की सल्तनत का आगाज था, जो कि सोने का सर था। और वो काफी मील दूर यरूशलम में गया और वो वहाँ से यहूदियों को असीर करके अपनी सल्तनत में ले आया और उन्हें गुलाम बना लिया और उनके साइंसदानों और बाकियों को अपने लिए इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे रूस ने जर्मनी में दाखिल होकर किया था और यही वजह है कि उनके पास एटम बम और बाकी चीजें हैं जो उन्होंने जर्मन साइंसदानों के वसीले हासिल की। यही वजह है कि आज वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। उन्होंने इन्हें असीर करके अपने पास रख लिया था, उनके अपने पास ये नहीं था, लेकिन उन्होंने ये चीजें हासिल कर ली जैसे नबूकदनज़र ने यहूदियों से हासिल की थी। और हम देखते हैं कि उस वक्त के दौरान एक रास्तबाज आदमी था जिसका नाम दानियल था और वो खुदावंद का नबी था, जिसे उस वक्त असीर करके लाया गया था और उसे तमाम नजूमियों और हकीमों और दानिश्वरों और बाकियों पर एक हाकम मुकर्रर कर दिया गया था। और ये काम नबूकदनज़र बादशाह के दौर में हुआ था, लेकिन अब बिलतशज़र इक्तदार में आ गया था और बिलतशज़र एक शरीर किस्म का आदमी था वो किसी चीज की परवाह नहीं करता था। और फिर बाबल के तमाम लोग अपने तहफ्फुज की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज तसव्वुर करते थे। एक बार जब वो फाटकों के अंदर आ जाते थे तो फाटक बंद हो जाते थे और 200 फीट ऊंची दीवारें थी और 80 फीट मोटी थी, और वो उन दीवारों के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते थे। लेकिन ये याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंस ने आपको कितना महफूज बना दिया है। जब आप गुनाह करते हैं तो खुदा आपको तलाश कर लेता है। सिर्फ एक जगह महफूज है और वो मसीह यसु में है। अब वो अपने आप को दुनिया की क्यादत करने वाली अजीम कौम समझने लग गए थे। वो अपने आप को एक मसाली और जदीद तहजीब समझने लग गए थे, जैसे हम यहाँ शानदार अमेरिका में रहते हैं। और मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हूँ और मुझे डर है, क्योंकि हम भी वही रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। और हमें लगता है कि हमारे पास वो चीजें हैं, हमारे पास बेहतरीन साइंसदान है, बेहतरीन मशीन गने हैं और एटम बम है, हमारे पास तेज तरीन त्यारे हैं और हर किस्म की चीजें हैं। और दुनिया की मुमताज कौम होने की वजह से हम सोचते हैं हम खुदा के बगैर भी महफूज हैं। ये कितना खूबसूरत नमूना है। और खुदा कभी नहीं बदलता। गुनाह के बारे में उसका रवैया आज भी वैसा ही है जैसा उस वक्त था। और यहाँ कोई छुपने की जगह नहीं है, सिर्फ मसीह में आप महफूज हैं। और उस बड़े शहर में बैठे वो सोच रहे थे, दुनिया की कोई भी फौज इस शहर पर किसी भी तरह हमला नहीं कर सकती है। बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी और उनके पास जदीद आलात थे, और उन्होंने बाहर की दुनिया से अपने आप को महफूज कर लिया था। लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ थे कि एक शरीर कौम जिसे मादी और फारसी कहा जाता है और आज वो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, वो इस बात से ना वाकिफ थे कि कई मील दूर दरियाए फरात का रुख मोड़ने के लिए वो एक नदी खोद रहे हैं ताकि वो दीवारों के नीचे से अंदर आ सके, जबकि वो सोच रहे थे कि वो महफूज हैं। और हर वक्त वो ऐसा ही सोचते थे, और यही सोचते सोचते वो लोग गुनाह में फंस गए। ऐसा लगता है जब इंसान ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे ऐसा लगता है कि वो खुद कफील हो गया है, वहीं से गुनाह उसे पकड़ना शुरू करता है। चर्च, कौम या फर्द जब ये सोचना शुरू करता है कि बाहर से उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, तब गुनाह उसमें हुक्मरानी करना शुरू कर देता है। ये सच है। और हम ये भी देखते हैं कि जब लोग अपने आप को अलग समझना शुरू करते हैं तो अक्सर गुनाह उनके अंदर दाखिल हो जाता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। चुनाचे जब उन्होंने वो फाटक बंद कर दिए तो वो समझने लगे कि वो महफूज हैं। लेकिन खुदा आसमान से नीचे देखता है और गुनाह किसी भी कौम के लिए रुसवाई है। मैं सोचता हूँ आज रात हमारे पास तमाम अजीम साजो सामान है, और हमारे पास एटमी कंट्रोल शुदा आप दोजों के साथ साथ हमारे पास जेट तैयारे हैं जो कई सौ मील फी सेकंड की रफ्तार से या मिनट की रफ्तार से परवाज करते हैं, जो आवाज की रुकावट को भी पार कर सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे गुनाह ही तुम्हें पकड़वाएंगे। और इस वक्त के दौरान उन्होंने अपने फाटक बंद किए हुए थे और उन्होंने सोचा कि वो महफूज है, इसलिए वो जैसे चाहें ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार सकते हैं। वो सबसे मुमताज कौम थी बाकी तमाम कौमें साइंस और मदद के लिए उनकी तरफ देखती थी। और देखें, ऐसे वक्त के दौरान वहाँ के बादशाह ने सोचा, क्यों ना इस अजीम वक्त में खुशी मनाई जाए। और उसने एक तारीख मुकरर की कि वो एक बहुत बड़ी रक्स की महफिल करने वाला है, या जैसे मैं कहता हूँ, जदीद रॉक एंड रोल पार्टी की। इसके अलावा और कुछ नहीं था, बस उसने वक्त को मुकरर किया और उसने तमाम मशहूर शख्सियात को बुलाया, तमाम सिपाहियों और कप्तानों को दावत दी और उनकी तमाम बीवियों और लोंडियों को भी दावत दी। अब एक लोंडी कानूनी तौर पर एक कस्बी होती थी। और क्या आप देखते हैं, जब इंसान खुद को खुद कफील समझने लगता है तो वो गुनाह में डूबना शुरू हो जाता है। और उसने बेहतरीन शराब मंगवाई जो उस वक्त मिल सकती थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रॉक एंड रोल पार्टी करने जा रहा था। उसने सोचा वो महफूज है, उसे लगा कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो महफूज है। और महल के बिल्कुल पीछे वाले बागात में उसने इस नाच रंग का इंतजाम किया हुआ था। और बाग की चारों तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा सजावट की हुई थी, हर तरफ झंडियां लहरा रही थी और वहाँ नाचने वाली लड़कियों और बाकी बहुत सी खवातीन को फौजियों की तफरी के लिए बुलाया हुआ था। और वहाँ हर किस्म की बियर और शराब मौजूद थी। अगर ये आज की रॉक एंड रोल पार्टी का एक अच्छा जदीद सेटअप नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम ये कैसे होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था और वो एक बहुत बड़ा वक्त गुजारने जा रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं, वहाँ शादीशुदा औरतें भी आई होंगी। उनके शोहर घर पर बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिए गए थे, जबकि वो तफरी करने निकल गई थी। और इसके बरक्स ऐसी माएं भी होंगी जो अपने बीमार बच्चे के साथ घर में होंगे और उनके शराबी शोहर तफरी के लिए बाहर चले गए थे। ये एक के छह हैं और दूसरे के आधी दर्जन हैं। और मैं उन्हें देख सकता हूँ और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। और मैं तस्वीर कर सकता हूँ, उन्होंने बैंड बजाया और मौसीकी शुरू कर दी और नौजवान एक दूसरे की बाहों में झूलने लगे और सिपाहियों ने नशे में चूर होकर औरतों को पकड़ लिया और अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हें चूमना शुरू कर दिया और अपनी कुर्सियों पर लेकर बैठ गए और वाह वाह कह रहे थे। वो सोच रहे थे वो महफूज हैं। ओ अमेरिका, वो खुदा जो उस दिन उस रॉक एंड रोल शराबी पार्टी को देख रहा था, आज रात तुझे देख रहा है। और वो लोग उस वक्त कैसी तफरी कर रहे थे। और मैं तस्वीर कर सकता हूँ कि वो बादशाह बिल्तशज़र आज के जदीद एल्विस प्रेसली की तरह था। ये उनकी तरह बहुत ज्यादा कमाल दिखा सकता है जैसे वो दिखाते थे। और हर वक्त ये सब कुछ जारी रखते हैं और ये नहीं जानते हैं मौत दरवाजे पर खड़ी हुई है। और पार्टी जब पूरी तरह से जोबन पर पहुंच गई तो जैसे अमूमन ये किसी जदीद हॉलीवुड टेलीकास्ट के बेहतरीन प्रोग्राम में होता है, उन्होंने सोचा कि वो मजहब के बारे में कुछ अच्छे लतीफे सुनाते हैं, बिल्कुल आर्थर गॉडफ्री के लिबास की तरह, या कुछ आज के जदीद लोगों की तरह, या अर्नी फोर्ड के लतीफों की तरह जो मुनादों का मजाक उड़ाता है। लेकिन खुदा अब भी आसमान से नीचे देखता है। लेकिन उन्होंने सोचा वो एक ऐसी कौम में रहते हैं जिसे छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन जो आप बोते हैं वही काटते हैं। जो भी हो, ऐ लोगो, इस बात से आगाह हो जाओ, चाहे आप एक कौम हो या एक चर्च हो या एक फर्द हो, आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। अब मैं उस बादशाह को खड़ा हुआ देख रहा हूँ और उसने कहा, जरा एक मिनट लड़कियों, आओ मिलकर मुनाद पर एक अच्छा मजहबी लतीफा सुनते हैं और वगैरह वगैरह, और सब झंडियाँ हिल रही थी और नौजवान औरतें कह रही थी वाह हाँ मेरा ख्याल है हम ये सुनना पसंद करेंगी। और आज के नौजवान लड़के लड़कियाँ उन जवान सिपाहियों की तरह अमल कर रही हैं, क्योंकि ये एक जदीद बाबल से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं एक अमरीकी हूँ, बिल्कुल जैसे उस वक्त दानियल बाबल का बाशिंदा था, लेकिन ये गुनाह करने का कोई बहाना नहीं है। एक मर्तबा एक लड़की से मैंने पूछा, क्या तुम क्रिश्चियन हो? उसने कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक अमरीकी हूँ। मैंने कहा, इस बात से कुछ साबित नहीं होता, कुछ भी नहीं। मुझे एक अमरीकी होने पर खुशी है, लेकिन इस बात से मसीहत की अकासी नहीं होती है, इससे कुछ साबित नहीं होता है। अगर हम गुनाह करते हैं तो हम अपने गुनाहों की अदायगी करने जा रही है, बस इस बात को समझ लें। उनके पास एक नबी था, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। उनके पास पैगाम था, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाना चाहा। अगर ये जदीद अमरीका नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता ये क्या है। इनके पास अंजील है, सच्चाई है, लेकिन ये उसका मजाक उड़ाना पसंद करते हैं। बस उन्होंने कहा, जाओ और उन पवित्र शोर करने वाले बर्तनों को ले आओ और उन्हें यहाँ लाया जाए ताकि हम उनका मजाक उड़ा सकें। खुदा गुनाहगारों को अपने लोगों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देता। आपको किसी रोज इसका हिसाब देना होगा। और फिर वो हैकल में गए और खुदावंद के बर्तनों को उठाकर ले आए, और उन्होंने खुदावंद के बर्तनों में शराब पी और तफरी की, और उन्होंने उन बर्तनों में होटल 92 और पब्स्ट ब्लू रिबन शराब अंडेल दी ताकि तफरी की जाए। हो फिर उन्होंने ग्लासों और बाकी बर्तनों को आपस में टकराया और जाम पीना शुरू किया और खुदावंद के दीन पर हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो इस बात से बेखबर थे कि वो क्या कर रहे हैं। और यही हाल आज रात इस कौम का है, जो जहालत की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को रद्द कर रही है और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे और नए जन्म की मुनकर है। हालांकि वो भी मजहबी लोग थे, लेकिन अब रॉक एंड रोल की शराब पार्टी में मस्त थे। वो मजहबी थे क्योंकि बाइबल फरमाती है उन्होंने अपने माबूदों की तारीफ की। इसलिए आप बहुत ज्यादा मजहबी होते हुए भी गलत हो सकते हैं। ये सच है, ये वफादारी नहीं है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। चुनाचे उनके पास एक अजीम रियासती चर्च था, एक मजहब था जिसकी वो खिदमत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुदा की मुकद्दस चीजों का मजाक उड़ाया। और आजकल खुदा की मुकद्दस चीजों का मजाक उड़ाना एक आम सी बात है। जो लोग साफ सुथरी और अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें पुरानी तर्ज के या पवित्र शोर करने वाले कहते हैं या किसी किस्म का मकरू नाम देते हैं, और वो खुदावंद की नेमतों और उन कामों को जो हमारे दरमियान कर रहा है उससे बुरी रूह या किस्मत का हाल बताने वाला या शैतान कहते हैं। हो तुम कैसे अदालत से बच सकते हो? शहीदों का खून तुम्हारे खिलाफ पुकार रहा है। अगर खुदा इस कौम की इनके जदीद गुनाह के मुताबिक अदालत नहीं करता तो उसे सदूम और अमूरा को फिर से उठाना पड़ेगा और उनको तबाह करने के लिए उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सच है, हमारी अदालत होने वाली है, और वो बड़े बड़े मोजजात जो हमारा मुकद्दस नजात दहिंदा कर रहा है वो आगाही की निशानियां हैं कि अदालत करीब आ गई है। और उसने इस कौम में मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब तक घूम घूम कर आगाही दी है, और वो इसे मुस्तरिद करते हैं, इस पर हंसते हैं इस पर तनकीद करते हैं और अपने अखबारों में लिखते हैं, ये बकवास है। इसके मुतालिक सोचें, ये जदीद बाबल है। अब जबकि वो जाम पी रहे थे और शराब पीते हुए अपने गिलासों को टकरा रहे थे, उसी वक्त अचानक से ऐसा हुआ जब ये अय्याश आदमी जिसका नाम बिल्तशज़र था अपने ग्लास में शराब डालने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखें फटने के करीब हो गईं। जैसे ही वो मुड़ा था और महल की तरफ देखा था तो उसने आसमान से आते हुए एक आदमी के हाथ को देखा था और उस हाथ ने दीवार पर ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दिया था। मैं चाहता हूँ आप गौर करें, उसने प्लास्टर पर लिखा था। अब हो सकता है जहाँ वो अपनी जदीद रॉक एंड रोल पार्टी कर रहा था वहाँ उसने चिराग रखे हुए थे और रोशनियाँ दीवार पर पड़ रही थी। खुदा किसी कोने में छुप कर काम नहीं करता है। खुदा रोशनियों में चलता फिरता है और बातचीत करता है। बस उसके हाथ की लिखाई सब लोगों के सामने उस दीवार के प्लास्टर पर लिखी जा रही थी और बादशाह ने पहले उन्हें देखा था, जो जदीद मजा निगार, अच्छे रेडियो कॉमेडियन और टेलीविजन के अदाकार थे। बस जैसे ही उसने पीने के लिए अपना ग्लास या अपना कप पकड़ा जो उसके हाथों में था तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो थर थर कांपने लगा। मैं तस्वीर कर सकता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बाइबल फरमाती है उसकी हड्डियाँ, उसके जोड़ ढीले हो गए थे, वो यकीनन पूरी तरह से हिल गया था। ऐसा ही हुआ था। जब खुदा अपने निशान जाहिर करना शुरू करता है तो ये हलचल का वक्त होता है। ये सच है। और जब उसने गौर किया तो उसके नाच रंग ने उसे हिलाकर रख दिया। और फिर जैसे ही उसने दीवार पर ये तहरीर देखी, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि मिसिज ने अपने होंठों पर रंग लगाया हुआ था। मैं नहीं जानता इसे क्या कहूँ। और उसके बाल चमक रहे थे और इधर उधर उड़ रहे थे और आसपास शराबी सिपाही मौजूद थे। कहा, अजब है, आज बादशाह को क्या हो गया है। और जैसे ही उसने हिचकी ली तो किसी जवान आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, सब ठीक है, आए हम एक मर्तबा और रक्स करते हैं। और उसी घड़ी म्यूजिक रुक गया। हो ऐ गुनाहगार कौम, किसी रोज तेरा रॉक एंड रोल बंद होने वाला है। अगर आप एक मुनाद की आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर किसी रोज आप अदालत में खुदा के हाथ की आवाज सुनेंगे और रॉक एंड रोल बंद हो जाएगा, बिल्कुल जैसे उस बैंड ने किया था और टाइटैनिक में उन्होंने ये गीत बजाया था, तेरे करीब आके मेरे खुदा। किसी दिन आप इस धुन को बदलने जा रहे हैं। और म्यूजिक रुक गया और उन्होंने अपने मजाक करने वाले को देखा, उन्होंने अपने टेलीविजन के स्टार को देखा और वो वहाँ खड़ा हुआ था। उसके घुटने एक साथ बजना शुरू हो गए और जब उसने उस अजीम चीज को होते हुए देखा तो उसने कहा, चारों तरफ दीवारें हैं और मेरे मुकरर किए हुए मुहाफिज दरवाजे पर खड़े हुए हैं। लेकिन आप गौर करें, जिस तरह हम सोचते हैं खुदा को दरवाजे से अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस जलाल से नीचे आता है और उसके हाथ ने दीवार पर नविश्ता लिख दिया। और जल्दी से एक बहुत ज्यादा जदीद जगह होने की वजह से बाइबल कहती है उसने अपने तमाम काहिनों को बुला लिया, माहिरीन फलकियात, तमाम बिशप, डॉक्टर और पोप और कार्डिनल और बाकियों को बुला लिया और कहा, अब मैं आपको बताता हूँ साइबो, मैंने आपको मुनादी करने और बाकी काम करने की सहूलत दी हुई है जो आप चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताएं दीवार पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसा उस वक्त था अब भी वैसा ही है। वो माफूकल फितरत के आदी नहीं थे, वो उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानते थे। वो गैर जुबानों का तर्जमा करना नहीं जानते थे, वो आसमानी जुबान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वो गूंगों की तरह खड़े रहे। वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वो सब वहाँ खड़े हुए थे। याद रखें, यहाँ गैर कौम की बादशाही को लाया जा रहा है और जैसे ये मफूकल फितरत तरीके से आई है, वैसे ही इसका इख्तिताम मफूकल फितरत तरीके से होगा। लेकिन वो बिशप और कार्डिनल और बड़े डॉक्टर मफूकल फितरत का तर्जमा ना कर सके, वो उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने अपने फन की तमाम किताबों को देखा और उन्हें ऐसी कोई बात ना मिली जिसका मुवाजना उसके साथ कर सकते। आप देखें, रूहानी बातें रूहानी तरीके से समझी जा सकती हैं। और वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो नहीं जानते थे कि क्या करें। और आखिरकार मलका वहां आ गई। याद रखें, वो रॉक एंड रोल पार्टी में शामिल नहीं थी और उसे इस तरह मालूम हुआ था कि वहां कुछ हुआ है, क्योंकि कोई पैगाम लेकर आया था कि बादशाह कांप रहा है। और पार्टी रुक गई। वो अच्छे ईमानदारों में से एक थी और किसी न किसी तरह वही एक थी जो अभी तक भूली नहीं थी। मलका भागती हुई पार्टी में आई और उसने जदीद जोकरों और बैंड वालों को कांपते हुए देखा। उसने कहा, ए बादशाह, तू हमेशा सलामत रहे। लेकिन उस वक्त वो मलका नहीं जानती थी, वो एक तरह से मर चुका है। कहा, तू हमेशा सलामत रहे। मैं जानती हूँ आप सब दीवार पर लिखे हुए नविश्ते की वजह से परेशान हैं, और मैं पोप बिशप और कार्डिनल और इल्मे इलाहियात के डॉक्टरों को जानती हूँ, उनमें से कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता है। लेकिन ए बादशाह, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तेरी सल्तनत में एक आदमी मौजूद है जो मफूकल फितरत बातों के बारे में जानता है। ओ भाई, जबकि हम आज दीवार पर लिखा हुआ नविश्ता देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो इसके बारे में जानता है। हो सकता है आप शहर के हर डॉक्टर के पास गए हो और उन्होंने आपको बताया हो आप मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी मौजूद है। हो सकता है आप गुनाह में इतना ज्यादा फंस गए हो और आपकी रूह जहन्नम की दीवारों की तरह काली स्याह हो गई हो, और हो सकता है आप बगैर किसी उम्मीद के खुदकुशी के लिए तैयार हो, लेकिन एक आदमी मौजूद है और उसका नाम यीशु है। वो मफूकल फितरत को जानता है और वो हमारी बादशाही में मौजूद है क्योंकि हम उसकी बादशाही के फर्जंद हैं। एक आदमी मौजूद है। कहा गया वो मफूकल फितरत को जानता है। बरसों पहले उन्होंने उसमें खुदा की रूह को पाया था और उसके अंदर एक बेहतरीन रूह पाई गई थी। उसने ख्वाबों की ताबीर बताई थी, उसने रोयाएं देखी थी और उनमें से हर एक बिल्कुल सच्ची थी। इसलिए परेशान ना हो, मुझे सिर्फ चंद मिनट दे दे और मैं उसे यहाँ बुला लूंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे बुलाएंगे। हो सकता है आज आपके घर में उसके लिए जगह नहीं है, आप बहुत मसरूफ हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बियर पी रहे हैं और रॉक एंड रोल पार्टी कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है, आप उसे बुलाएंगे, ये सच है। और दानियल को अंदर बुलाया गया और जैसे ही उसे बुलाया गया, वो रास्तबाजी का मुनाद था, खुदा का एक बंदा था। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुदा का एक बंदा उस जगह पर रह रहा था। बरहाल उससे उसके खिलाफ कुछ कहना था, लेकिन गौर करें, बादशाह ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए वो बादशाह इस हालत में पहुंच गया था। और वो दानियल को अंदर ले आए और उसने कहा, तुम्हारे पोप और डॉक्टरों ने इसके बारे में क्या बताया है? उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ होगा? दानियल ने कहा, ओ बिल्तशज़र, तुझे सब बातों के बारे में इल्म था, तुझसे छुपी हुई नहीं थी। और मैं अमेरिका से कहता हूँ, काश मैं इन्हें इसी घड़ी अपनी आवाज सुना सकता। तुम इन सब बातों से बेखबर नहीं हो। जो गुनाह पहली कौमों ने किए थे, वही गुनाह हम भी कर रहे हैं। हम तराजू में तोले गए हैं और कम निकले हैं। फ्रांस के साथ क्या हुआ, जर्मनी के साथ क्या हुआ, और बाकी दूसरी कौमों के साथ क्या हुआ जो शराब शबाब और तफरी में पड़ गई थी। हमेशा इसी तरह होता है और हम अदालत से बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। और उसने कहा, तेरे बाप को खुदा ने एक बड़ी कौम बनाया था, लेकिन वो उसे भूल गया और उसने वही काम किए जो तू कर रहा है। और खुदा ने उसे एक जंगली दरिंदे में बदल दिया, कहा तू इन बातों से वाकिफ है, और फिर तूने उन मुकद्दस बर्तनों को लिया है और उनका मजाक उड़ाया है। गौर करें, उसने कहा नविश्ता दीवार पर लिखा गया है और तेरी बादशाही के दिन गिने जा चुके हैं। दूसरे लफ्जों में, बादशाह यहाँ देख, तेरे दिन गिने जा चुके हैं। तेरी बादशाही तुझसे छीन कर दूसरी कौम को दे दी गई है, जो कि जालिम और बेदीन कौम है। एक ऐसा शख्स चाहिए जो इन जैसा ही बुरा हो। खुदा गुनाह को गुनाह से लड़ाता है। मैं आज सोचता हूँ, ठीक उसी वक्त, मैं ये बात पहले भी कह सकता था, जब वो वहाँ खड़ा हुआ था और दीवार पर नविश्ता देख रहा था, वो इस बात से ना वाकिफ था कि वहाँ उन फाटकों के नीचे उसके सिपाही मारे जा चुके थे, और गलियों में दुश्मन के सिपाही महल के मुहाफिजों को मार रहे थे। वो सीढ़ियों तक आ पहुंचे थे, और वो औरतें जो वहाँ खड़ी थी, वो अपने बच्चों से दूर थी, अपने शोरों से दूर थी, और शोहर अपनी बीवियों से दूर थे, लेकिन सब नशे की हालत में थे और जदीद किस्म का रक्स और बाकी काम कर रहे थे। और सिपाही सीढ़ियों पर पहुंच गए थे, और कुछ ही मिनटों में बादशाह का कत्ल होने वाला था। तमाम नशे में डूबे हुए इंसानों का कत्ल एक बेदीन कौम के हाथों होने वाला था, जो शैतान के कब्जे में थी। और वो दरिंदे उन औरतों और जवान लड़कियों के कपड़े उतार कर उन्हें नंगा करके गलियों में घसीटने वाले थे। उन्हें ठोकरें मारेंगे और उनके सर दीवारों से मार मार कर फोड़ देंगे। कुछ देर उनके साथ अपनी हवस पूरी करके उन्हें मार देंगे। वो पागल शराबी सिपाही थे, इंसाफ दरवाजे पर था, क्योंकि वो तराजू में तोले गए थे और कम निकले थे। और मुझे हैरत होती है, आज हमारे जदीद दौर में क्या हो रहा है। तमाम शिफाया इबादतों पर हंसा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। जिंदा खुदा की कलीसिया पर हंसा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। और जैसा बाइबल में लिखा है, लोग वैसे ही हो गए हैं। डीट गुमंड करने वाले वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। मैं सोचता हूँ, हम इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते हैं, और फिर अचानक से हमें मालूम होगा कि रूस साइंस में हमसे 5 साल आगे निकल गया है। हम बहुत ज्यादा पार्टियों में फंसे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा गुनाह में डूबे हुए हैं। कलीसिया बहुत ज्यादा नींद में है, उसे दुआ या इबादत की कोई परवाह नहीं है। ये बेफिक्र हैं। ये भी जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया और हकीकी रूह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये उनमें नहीं जाएंगे। इन्होंने तंजीमी कपड़ों को बहुत ज्यादा पहना हुआ है। इनके पास दुआ या इबादत के लिए वक्त नहीं है। इनके पास टेलीविजन और फिल्में देखने के लिए वक्त है, और घूमने फिरने और शराबी पार्टियों और बाकी जगहों पर जाने के लिए वक्त है। ये सच है। हो सकता है ये बातें पुरानी तर्ज की लगे, लेकिन इस कौम को आज इसी चीज की जरूरत है। अंजील के साथ बहुत ज्यादा जनाना सलूक किया जा रहा है, और रबड़ के दस्ताने पहने हुए हैं, जबकि इसे रूहुल कुद्दस के जरिए ब्राय रास्त पकड़ना चाहिए। ये सच है। बिली ग्राम ने तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले अपने एक पैगाम में कहा था, कहा ये कौम जब चाहे रूस का सैटेलाइट बन सकती है। रूस ये किसी भी वक्त कर सकता है। हम कहाँ खड़े हैं? इसी दिन आप चर्च जाने की बजाय एल्विस प्रीस्ली के गानों के रिकॉर्ड खरीदेंगे और हमें सुसी से प्यार है घर में बैठकर सुनेंगे। तुम तराजू में तोले गए हो और तुम कम निकले हो। क्या हुआ है? दीवार पर नविश्ता लिखा जा रहा है। रूस ने जमीन से 500 मील ऊपर एक स्पुतनिक भेजा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और 30 मिनटों के अंदर अंदर ऐसे दर्जनों मस्नुई सियारे अमेरिका के ऊपर छोड़ सकता है और फोन करके कह सकता है हथियार डाल दो वरना कुछ ही मिनटों में तुम राख का ढेर बन जाओगे। वो ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उन्हें रोक सके। ये उनके हाथों में है, एक खूनख्वार बेहिस बेदीन कम्युनिस्ट के हाथों में है। यही वो चीज है जिसे खुदा गुनाह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। यकीनन ऐसा ही है। अगर आप बाइबल पढ़ें तो रूस को मुकाशवा के मुताबिक ऐसा ही करना है। मैं नहीं, हो सकता है आप नबूवत पढ़ाने वाले उस्ताद इस बात से मुतफिक ना हो, लेकिन इंतजार करें जब तक ये नहीं होता। रूस को यहाँ इसी मकसद के लिए रखा गया है। बाइबल यूं फरमाती है, अब वो यहाँ एक स्पुतनिक सियारे के साथ मौजूद है। हमने एक रात एक सियारा छोड़ने की कोशिश की थी। हमने सोचा था हम भी वैसे ही कामयाब हो जाएंगे जैसे वो हुए थे, लेकिन वो बस जमीन से 3 फीट बुलंद हुआ और सीसी की आवाज निकालते हुए नीचे गिर गया। बहुत ज्यादा रॉक एंड रोल और गुनाह है। हम तराजू में तोले गए हैं और हम कम निकले हैं। खुदा रहम करे, हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा अगर वो अपने मिसाइल स्पुतनिक सियारे में भेज दे और कहें हथियार डाल दो वरना 5 मिनट में तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा? यकीनन हमारी हुकूमत जान बचाने के लिए हथियार डाल देगी। यही वही चीज है जो ये कर सकते हैं। फिर आप अमरीकियों का क्या होगा? मेरा मतलब सिर्फ यहाँ बैठे हुओं से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब पूरी कौम से है। मैं कौमी सतह पर कह रहा हूँ। मैं तुम चलाक लड़कियों से मुखातिब हूँ जो अपने छोटे होंठों को किसी गुलाब की कली की तरह रंग लेती हैं और किसी कोने में अंजील की तबलीग करने वाले किसी मुनाद का मजाक उड़ाती हैं। और तुम ऐ नौजवानों जो ये समझते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा समझ है और तुम इसे अकल से काबू कर लोगे, फिर पापा जी आपका क्या होगा जो मामा के साथ घर में बैठकर रात को टेलीविजन देखते हैं जब बच्चे बाहर होते हैं और बहनें कंटीन में बैठी होती हैं और वो रॉक एंड रोल की पार्टी कर रही होती हैं और आप टेलीविजन देख रहे होते हैं और अंजील का मजाक उड़ा रहे होते हैं? तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ए चर्च मेंबर? तुम्हें क्या हासिल होगा चाहे तुम शहर के बड़े से बड़े चर्च के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लो, लेकिन जब तक तुम खुदावंद यीशु के खून की हिफाजत में नहीं आते तुम भी उन लोगों के साथ फना हो जाओगे जो फना होने वाले हैं। बस कोई उम्मीद बाकी नहीं है। क्या होने वाला है? ऊपर एक सियारा लटका हुआ है और क्या होगा? कौम हथियार डाल देगी। यकीनन हुकूमत के लिए इससे अच्छा कोई और फैसला नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा जब बहुत ज्यादा सिपाहियों से भरे हुए बैरी बेड़े आएंगे और हवाई जहाजों की कतारें लग जाएंगी और वो इस जमीन पर उतर जाएंगे और औरतों की इज्जतें पामाल की जाएंगी? फिर तुम क्या करोगे? ये उनका है, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो इस पर कब्जा कर लेंगे। ऐ जवान लड़कियों, ऐ जवान लड़कों और बाकी लोगों, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी कौम हो या कोई भी हो जो ये करता है, चाहे फर्द हो या कौम हो, गुनाह की कीमत अदा करनी पड़ती है। और जालिम बेदीन बड़े जबड़े और बड़ी मूछों वाले कम्युनिस्ट सिपाही आपकी बीवियों को पकड़ लेंगे और आपकी नौजवान लड़कियों की इज्जत पामाल करेंगे और तुम्हें वहाँ खड़े होकर ये देखना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप नाच रंग और गुनाह और टेलीविजन प्रोग्राम को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ रस्मी ठंडे मुनाद हैं जो मफूकल फितरत की ताबीर नहीं बता पाते हैं। दीवार पर नविश्ता लिखा हुआ है, ये ठीक बात है, और हम तराजू में तोले गए हैं और कम निकले हैं। ऐसा कब हो सकता है? सुबह की रोशनी होने से पहले भी हो सकता है। इसे कौन रोकेगा? आजमा कर देख लें। बाइबल कहती है ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वक्त जिंदा खुदा की कलीसिया को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम उठाए जा चुके होंगे। इसलिए दोस्तों सुनो, अगर वो वक्त इतना करीब है और हम दीवार पर लिखा हुआ नविष्ता देख रहे हैं, तो अब उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। अमेरिका में मुनादी हो चुकी है, मफूकल फितरत काम दिखाए जा चुके हैं और ये लोग मुसलसल उसे रद्द करते जा रहे हैं। आप देश में किसी जगह जाएं और बेदारी की इबादत करें और एक हफ्ते में 40 लोगों को तब्दील भी कर लें और 6 हफ्तों बाद वापस जाएं, आपको 4 भी नहीं मिलेंगे। मछलियों का पुराना तालाब सूख चुका है। खुदा को बस इतने ही लोगों का इंतखाब करना है और जब आखिरी शख्स अंदर आ जाता है तब दरवाजा बंद हो जाता है और काम खत्म हो जाता है। जब रहम को टुकरा दिया जाता है तो अदालत के सिवा कुछ भी नहीं बचता है और हम रास्ते के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। मफूकल फितरत काम दिखाए जा चुके हैं, लोग उन पर हंस चुके हैं और मजाक उड़ाया जा चुका है। और आखिरी बात ये है, खुदा अपनी ताकत में अपने प्यारे बेटे के रूप में आ चुका है, अपने कलीसिया के वसीले अपने काम दिखाए हैं और वो कहते हैं ये अरवा प्रस्ती है या शैतान है। अब अदालत के सिवा और क्या बचता है? और नविष्ता दीवार पर लिखा जा चुका है। और अगर ये इतना करीब है तो हर एक उस्ताद जानता है कि चर्च रैप्चर में चला जाएगा इससे पहले कि मसीबत का वक्त आए। अगर ये इतना करीब है तो कल सुबह होने से पहले भी ये हो सकता है। रैप्चर के बारे में क्या ख्याल है? ये तो और भी ज्यादा करीब है। हो खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद की आमद करीब है। नविष्ता लिखा जा चुका है और ये बाइबल में तहरीर किया गया है और हम अब इसे देखने के लिए जिंदा हैं। क्या आप मेरी बात का यकीन करके इस घड़ी यीशु मसीह को कबूल करेंगे? तौबा करो और बपतिस्मा लो। पतरस ने फरमाया, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है, क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम नजात पाए। जब तक आप मसीह में नहीं आते हैं, आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, नाजरीन या कैथलिक हैं, जब तक आप मसीह में नहीं आ जाते आप खोए हुए हैं। और मसीह आप में तब आता है जब आप रूहुल कुद्दस के जरिए नई पैदाइश पाते हैं। आज रात उसे कबूल करें। आएं, हम दुआ करते हैं अपने झुके हुए सरों के साथ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं, यहां कितने हैं जो जानते हैं कि वो अजीम रैप्चर होने वाला है? हो सकता है आप आज रात अपनी बीवी के साथ सोएं और सुबह तक वो उठाई जा चुकी हो। आप वालिद और वालदा आज रात अपने बच्चों को चूमकर सुलाएं और कल सुबह होते ही छोटे बिस्तर खाली हो और आप सड़क पर भागते हुए जाएं और मिसेज जोन्स को तलाश करें तो पता चले वो भी जा चुकी है। उठाया जाना बिल्कुल करीब है, बाइबल ने वाजे तौर पर ये बता दिया है। और इस मीटिंग में जबकि आपके पास मौका है, इसलिए ऐ ज़हीन मर्दों और ऐ ज़हीन औरतों, आप अपने दिल की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं और कहते हैं ऐ खुदावन खुदा मुझे उस अबदी जिंदगी से भर दे? क्योंकि अगर आपकी रूह अभी तक आपके ज़हनी तस्वुर के साथ जुड़ी हुई है तो आप जमीनी हैं, लेकिन खुदा का रूह आसमान से आता है और आपके दिल में आ जाता है और आपको रूहुल कुद्दस से भर देता है। जब मुसीबत आती है तो रूह यानी रूहुल कुद्दस अपने बनाने वाले के पास वापिस लौट जाता है और आप भी उसके साथ चले जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने मजहबी हैं, जब तक आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऊपर लेकर जाए आप नहीं जा सकते हैं। आज रात अपने सरों को झुकाए हुए यहाँ कितने लोग हैं जो इस पैगाम के मुताबिक अपने हाथ उठाकर मसीह को कहेंगे ऐ खुदा मुझे अपने रूहुल कुद्दस से भर दे ताकि जब तू आए तो मैं तेरे साथ चला जाऊँ? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? पूरी कलीसिया तैयार है, खुदा आपको बरकत दे। तकरीबन 200 या उससे भी ज्यादा हाथ हवा में बुलंद हो गए हैं। गुनाहगार दोस्त, अगर आपने कभी मसीह को कबूल नहीं किया तो क्या आप इस वक्त अपना हाथ उठाकर कहेंगे खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर, खुदा आपको बरकत दे खातून वहाँ पीछे, खुदा आपको बरकत दे। कोई और कहेगा, ऐ खुदावन बस मुझे याद रखा जाए, खुदा आपको बरकत दे। वहाँ नीचे, खुदावन आपके साथ हो, ऐ खुदावन मुझे याद रखना। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे एहसास हो गया है, शायद मैं एक तवील अरसे से मसीह होने का दावा कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि दोबारा पैदा होना क्या है। मुझे कभी रूह कुद्दस नहीं मिला है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो उसे देख भी नहीं सकता। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, ऐ रूह कुद्दस मुझ पर रहम कर, और जब तू चर्च को लेने आए तो मुझे भी साथ ले जाना। खातून, खुदा आपको बरकत दे। क्या कोई और है, ऐ खुदा मुझे याद रखना। जनाब, आपको बरकत मिले। खातून, खुदा आपको बरकत दे। ऐ खुदा मुझे याद रखना। नौजवान साथी, खुदा आपको बरकत दे। वहाँ वो खातून है, खुदा आपको बरकत दे। वहाँ पीछे नौजवान खातून है, और वहाँ पीछे एक खातून है। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, जबकि मैं नविश्ता दीवार को देख रहा हूँ, मुझे इतनी समझ मिल गई है, और जो कुछ बाइबल से कहा गया है मैं देख रहा हूँ। वो आज रात तारीख का दोहराया जाना है। हम आखिरत में हैं, और कोई मदद नहीं कर सकता है। जो चीज दुनिया को तबाह करने वाली है, वो गुनाहगार आदमी के हाथ में है। बस चंद एक और है। हो सकता है कि आप आखिरी शख्स हो जिसे मसीह ने अपने पास आने के लिए मुकरर किया हो। जब वो आखिरी शख्स आ जाएगा, अदालत आ जाएगी। हो सकता है एक ही कमी हो, और वो आप हो। क्या आप उसे आज रात कबूल करेंगे, जबकि हम इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 20-30 साथ ऊपर उठ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है कि हम एक ऑल्टर कॉल दें और लोगों को यहाँ सामने बुलाएं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, यकीनन हो मुखलस बने और वार्निंग की आवाज को सुने। संजीदा होकर मसीह से कहें, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, कहें, खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर और मुझे कबूल कर, इससे पहले कि रहम की घड़ी गुजर जाए, इससे पहले कि मैं गुनाह में रहम का वक्त जाया कर दूं, मुझ पर रहम कर खुदावन। और वो ऐसा ही करेगा। अब दुआ करते रहें, जबकि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मुबारक खुदावन, हम आज रात एक खौफनाक हालत में खड़े हैं, जैसे कि हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं और जानते हैं किसी भी घड़ी रेडियो पर ऐलान हो सकता है, और ये रॉक एंड रोल बैंड किसी भी वक्त बंद हो जाएगा और गीत बजने लगेगा, मेरे खुदा तेरे करीब रहूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और अदालत आ जाएगी। हमारी तरफ मिसालें तानी गई हैं, तबाही और एटमी तवानाई मीलों बाद मीलों, टनों बाद टनों जमीन को उजाड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, और बाकी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में आग लगा देंगी, और ये चीज एक गुनाहगार आदमी के हाथ में है, और बाइबल कहती है सब कुछ इसी तरह होगा, और हम नविश्ता दीवार पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ऐ खुदावन खुदा, मैं इस तरह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए ना काफी हूं, और मैं महसूस करता हूं कि मैं कितना छोटा हूं, और यहां खड़ा होकर ऐसे मौजू को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या तू मुझे माफ कर देगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाया हूं। लेकिन तो भी मैं अपने पूरे दिल की गहराई से दुआ करता हूं कि ये पैगाम लोगों के दिलों में उस तरह उतर जाए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो घड़ी करीब आ रही है। और ऐ खुदा रहम कर, और हर एक को बचा ले, और इन्हें रूह कुद्दस से भर दे, ताकि ये तेरे बच्चे बन जाएं और तेरी अलहियत की नेकी में लिपट जाएं, और खुदावन यीशु में सलामती हासिल करें। क्योंकि हमारी कौम महफूज नहीं है, हम सोचते हैं हम महफूज हैं। बाबल की बादशाही ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उस वक्त भी एक शरीर कौम काम कर रही थी, और आज भी एक शरीर कौम अपना काम कर रही है। हम जानते हैं अब तक वो हमसे आगे हैं, और हम उनके रहमो करम पर हैं। खुदावन चर्च तेरे रहमो करम पर है, वो तबाह करने आएंगे, लेकिन तू अपनी कलीसिया को उठा लेगा। اے خدا، آج رات ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور یسوع کی خاطر ہمیں برکت دے، اور ہم یہ دعا اس کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ بس فروتنی سے ایک منٹ با ادب رہیں۔ جب تک ہم گا رہے ہیں، فرشتہ لے لیں،
Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling.
او کاش یہ ابھی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہو لیکن یہ ٹھیک ہے، جب بھی وہ تیار ہے۔ آمین۔ میں اسے پا کر بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا یہ پرانا کمزور جسم جو یہاں کانپ رہا ہے پلک جھپکتے ہی بدل جائے گا، اور میں ایک بار پھر ایک نوجوان بن جاؤں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ بوڑھے وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، وقت کے ایک لمحے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لافانی اس کی صورت میں کھڑا ہوگا، ستارے اور سورج سب پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا ہی موقع ہے اس سے منہ نہ موڑنا۔ ہو آپ میں سے کتنے چاہیں گے کہ اس دن وہ آپ سے کہے شاباش۔ اس ابدی دن میں پیارے نجات دہندہ کو اپنے دل سے دور نہ ہونے دیں، اس سے منہ نہ موڑیں، آج رات ہی یہ ہونے دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسے پورے دل سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ آنا چاہے تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہو بہت شکر گزار ہیں۔ کیا آپ کو اب ایسا نہیں لگتا؟ آپ اندر سے صاف ہو چکے ہیں۔ انجیل ہمیں کلام کے پانی سے دو ڈالتی ہے۔ بس اب جو بھی آپ کے قریب ہے اس سے ہاتھ ملائیں اور کہیں خدا آپ کو برکت دے، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مسافر خدا آپ کو برکت دے، بہن بھائی خدا آپ کو برکت دے۔ ہم راہ پر چلنے والے مسافر ہیں، بڑی پرانی شاہراہ پر چل رہا ہوں۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں بتاتا ہوں میں پرانی طرز کا مسیحی بننا چاہتا ہوں۔ خداوند جو کچھ بھی میں جانتا ہوں اس سے بڑھ کر ہے۔ اب جبکہ ہم تعظیم کی اس گھڑی میں ہیں، میرا خیال ہے کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے دعا یا قطار لینا مشکل ہے۔ آئیں، مجھے یقین ہے کہ روح القدس بہت خوش ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ اب آپ کو جلدی سے ایک ایسا چرچ تلاش کرنا چاہیے اور اس چرچ میں جا کر بپتسمہ لینا چاہیے جو روح القدس سے بھرا ہوا چرچ ہو، اور جب تک آپ زندہ رہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جن کا مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرے گا؟ اس نے کہا وہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، پھر اس کی موجودگی یہاں ہے۔ پھر میں جانتا ہوں دوستو، میں جانتا ہوں شک کے سائے کے بغیر کہ یسوع یہاں موجود ہے۔ یہاں ایک آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے جو گلیل میں چلتا پھرتا تھا، یہ وہی آدمی ہے جس نے آپ کو اپنے خون کے وسیلے نجات دی ہے، اور اس کے مار کھانے سے آپ کو شفا ملی ہے، اور وہ یہاں وہ سب کچھ کرنے کے لیے موجود ہے جو اس نے کیا تھا، کیونکہ وہ وہی خداوند یسوع ہے۔ अब हम खामोशी से थोड़ी देर दुआ करें, थोड़ी देर दुआ करते रहें, जबकि मैं पाकरू की मर्जी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आज रात जो लोग अजाब में मुब्तला हैं, वो उस खूबसूरत मौसीकी को सुनना कितना ज्यादा पसंद करेंगे। वो लोग जो आपकी तरह इबादत में आ गए थे और उन्होंने आज रात की तरह अंजील को सुना था और फिर छोड़ दिया था, आज रात अजाब में मुब्तला हैं। वो लोग इस जगह को हासिल करने के लिए कितने बेताब होंगे जहां आप हैं, लेकिन आज वो बहुत दूर चले गए हैं। खुदावंद तू जिसने आसमान और जमीन को बनाया, तू जिसने मुबारक खुदावंद यीशु को यहाँ जमीन पर भेजा और रूह की सारी मामूरी उसमें बसी हुई थी, और तूने उसके होंठों से कहा मैं अंगूर की ताक हूँ और तुम डालियाँ हो। ताक खुद फल नहीं लाती है बल्कि शाखें फल लाती हैं। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदा, तू आज रात अपने आप को जाहिर कर, हमारे दरमियान उतरा, ताकि ये लोग जान जाएं जिस पैगाम की अभी अभी मुनादी की गई है वो तेरी तरफ से है, और तू हमें वार्निंग दे रहा है ताकि तैयार हो जाएं, क्योंकि आखिरी दिन करीब हैं। हो सकता है यहाँ बीमार लोग बैठे हों, खुदावन उन्हें हौसला दे ताकि वो शिफा पा जाएं, क्योंकि हम ये खुदा के जलाल के लिए मांगते हैं। अब खुदावन हम अपने आप को जिंदा खुदा की कलीसिया के तौर पर तेरे हवाले करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ हर एक हाथ उठ चुका है, और खुदावन आज रात मैं तुझसे एक खास बात के लिए इल्तजा कर रहा हूँ, और होने दे खुदावन ये लोग अपने आप को इस तरह हवाले कर दें कि रूहुल कुद्दस इनके दरमियान चल फिर सके। ऐसा ईमान दे और मैं भी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, ताकि तू अपनी नेमतों को इस्तेमाल करे और अपने आप को हमारे दरमियान साबित करे। हो सकता है हमारे दरमियान नए लोग भी आए हों। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वो हमेशा अदालत से पहले रहम करता है। मैं खुदाम से दरखास्त करता हूँ कि वहीं रहें और दुआ करें। आए हम दुआ करते हैं, और अब खास तौर पर जैसे मैंने मुनादी में कहा, और मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग यहाँ सामने हों या आप जहाँ कहीं भी हों, बस ये कहना शुरू करें, बाइबल फरमाती है कि वो सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों में छू सकते हैं। ठीक है, फिर अगर वो कल सरदार काहिन था तो वो आज भी वैसा ही है, तो फिर जैसे काम उसने कल किए थे अगर वो यकसा है तो वैसे ही काम वो आज करेगा, इसलिए अब उसे छुआ जा सकता है। आप अपनी कमजोरियों को सामने रखते हुए उसे छू सकते हैं और उसे बोलने दें। जरा सोचें, जब वो एक दिन इसी तरह सामीन के इर्द गिर्द खड़ा हुआ था, तो वहाँ एक आदमी आया जिसका नाम पतरस था या उसका नाम शमौन था, और उसने कहा तेरा नाम शमौन है और तू यूना का बेटा है, लेकिन अब से तू पतरस कहलाएगा। फिर वो क्या बन गया? प्यारा रसूल, जब फिलिपस नतनेल को वहाँ लेकर आया तो उसने कहा देखो ये एक इसराइली है जिसमें मकर नहीं है, दूसरे लफ्जों में ये एक ईमानदार मसीही आदमी है। कहा रबी तू मुझे कब से जानता है? कहा इससे पहले फिलिपस तुझे बुलाता जब तू दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा था। वो खातून जिसे खून जारी था उसने जमायत की तरफ मुड़कर देखा। लोग सोच रहे थे वो ये काम अबलीस के वसीले करता है, और उन्होंने अपने दिल में कहा वो बालजबूल है, और उसने उनके ख्यालात को जान लिया। क्या ये दुरुस्त है? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता जब तक बाप मुझे पहले नहीं दिखाता, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करो। अगर वो अपने चर्च में काम करता है तो ये काम होने चाहिए, क्योंकि ये उसका कलाम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस जमात में कम से कम दो या तीन लोग हों जिन्हें खुदावंद ये तौफीक दे ताकि उनके पास उसके लिबास को छूने का ईमान हो और वो अपनी रूह में वापिस आए और बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा उसने तब किया था जब वो यहाँ जमीन पर था, क्या आप सब मुतमिन होकर उसे अपना शिफा देने वाला कबूल कर लेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? कहें आमीन। क्या आप ऐसा कहेंगे? मेरी दुआ है वो ये बख्श दे। अब आप दुआ करें, और अगर आप यहाँ कितने बीमार लोग हैं जो सेहत याब होना चाहते हैं, अपना हाथ बुलंद करें। हर तरफ बीमार लोग शिफा पाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस इमारत में अगर कोई है जिसे मैं नहीं जानता, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है ये रोजेला है जो यहाँ बैठी हुई है। ये छोटी उम्र में शराबन बन गई थी और शराब की वजह से इसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और इसी तरह एक इबादत में इसे बुलाया गया था। इसे जब इसे खुदावन ने बुलाया था तो ये लड़की जानती थी कि मैंने इसे कभी नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में जानता था, और खुदावन ने इसे इसकी जिंदगी और इसकी हालत के बारे में बता दिया था और इसे बताया था ये ठीक होने वाली है। और आज रात ये यहाँ खुदा के फजल का तोहफा है। ये शराब की लत में मुब्तला थी और एक से एक डॉक्टर ने इसे ठुकरा दिया था, यहाँ तक कि ये गुमनाम शराबी बन गई थी। मैं इसे जानता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे पूरा यकीन है कि ये भाई जो मेरी तरफ देख रहा है, यहाँ बैठा हुआ है और स्लेटी सूट पहना हुआ है, ये वो भाई है जो हमारे लिए फूल लेकर आता है। मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त है। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये कुछ अरसा पहले मेरे घर आया था, बाई बॉयज शेल्स, बाई शेल्स के साथ आया था। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ब्रदर फ्रेड सोथमैन को अभी थोड़ी देर पहले इमारत में कहीं देखा था, लेकिन मैं भूल गया हूँ वो कहाँ थे। बहरहाल वो यहीं कहीं हैं, और मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन खुदा आप सबको जानता है। आप सिर्फ दुआ करें और खुदा से मांगें और अपने ईमान की जांच करें, और अब कोई भी इधर उधर ना जाए। अगले चंद लम्हों के लिए हकीकी तौर पर संजीदा रहें। अब वक्त ईमान रखें अगर आप रख सकते हैं, और अगले कुछ लम्हों के लिए अदबो अदाब का खास ख्याल रखें और बस खामोशी से बैठ जाएं। जरा सोचें, मसीह ने इसका वादा किया था, थोड़ी देर बाकी है और दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं एक जाति, इसमें जमीर है, इस दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा, और जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या ये सच है? इसे सच ही होना है। खैर, मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हूँ, अगर आप चाहें तो अपने सरों को बुलंद कर सकते हैं। ठीक यहाँ कोने में एक खातून बैठी हुई है। ये एक सियाफाम औरत है। खातून, मैं आपको नहीं जानता, खुदा आपको जानता है, लेकिन अब वो रोशनी औरत के बिल्कुल ऊपर है, उस पर है। अगर खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे कि आपकी परेशानी क्या है और आप किसके लिए दुआ कर रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? खुदावन यीशु आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। आप किसी मुश्किल में हैं या आपकी कोई ख्वाहिश है, इसलिए रोशनी आप पर ठहरी है। देखें दोस्तों, आप कहते हैं ठीक है, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा मुमकिन है कि आप इसे ना देख पाए। मैं ठीक सामने उसे देख रहा हूँ, समझे? आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रैनम, अगर आप उसे अपने हवास से देख सकते हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। ओ नहीं, पालूस ने उसे यानी यीशु को एक रोशनी की शक्ल में देखा था, लेकिन जो उसके साथ थे उन्होंने उसे नहीं देखा था। देखें, मजूसियों ने वो सितारा देखा था और वो रोशनी उनकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन किसी और ने उसे नहीं देखा था। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, ये नेमते हैं। इस औरत को साइनस की तकलीफ है, ये सच है। आपको दिल की भी तकलीफ है, ये बिल्कुल सच है। सुने, आपको लोग एससी नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, आपका लास्ट नाम अब शायर है। जी हाँ, आप नॉर्थ क्लीवलैंड स्ट्रीट पर रहती हैं। आपका मकान नंबर 1264 है, ये बिल्कुल सच है। आप खातून, आपने किसी को छुआ है, आप जानती हैं आपने मुझे नहीं छुआ। वो लड़की जो आपके साथ बैठी है वो भी दुआ कर रही है। और वो किसी और के लिए दुआ कर रही है, और ये उसकी माँ है, और उसके फेफड़ों के साथ कोई मसला है, और आपका उस औरत से कोई ताल्लुक है। आप उसकी बहू हैं और आपका नाम मार्गरेट है, ये सच है, और आप भी उसी जगह रहती हैं। मैं आपको अंदर आते और बाहर जाते देख रहा हूँ, बराबर में जो आदमी बैठा हुआ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है जनाब? क्या आप ईमान रखते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है? क्या आप रखते हैं? अगर खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे आपकी परेशानी क्या है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? आपको पेट की तकलीफ है, ये सच है। अगर ये दुरुस्त है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ठीक है, आप एक मुनाद हैं, यकीनन आप कह सकते हैं, आप उसके कलर्जी वाले कपड़ों को देखकर कह रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बताता हूँ, कोई समझ रहा है, आप एक प्रेसबिटेरियन हैं, लेकिन आप एक पेंटिकोस्टल मुनाद हैं, ये सच है। आमीन, आपकी घबराहट आपके अल्सर की वजह बनी है, बीमारी जा चुकी है, घर जाएं, क्योंकि आप ठीक हो गए हैं भाई। आमीन। खुदा पर भरोसा रखें, शक ना करें। आप क्या सोच रहे हैं, वो जो यहाँ बैठे हुए हैं? जी हाँ, क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं मैं खुदा का खादम हूँ, या फिर आप खुदा से कुछ और चाहते हैं? अगर खुदा मुझ पर जाहिर कर दे कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर क्या आप ईमान रखेंगे कि ये माफूकल फितरत काम है? क्या आप ईमान रखेंगी जो कुछ यस्सु यहाँ कहेगा पूरे दिल से? आपके जिस्म में एक उबार है, और वो उबार आपके कूल्हे पर है, बिल्कुल सच है। और आपको मेदे की भी तकलीफ है, ये एक असाबी हालत की वजह से है, ये सच है। जी हाँ, आपका नाम ईवा में है, रेड मैन आपका लास्ट नाम है, आपका मकान नंबर 1378 है, और वेस्ट की 13वीं गली है, ये सच है। ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैं खुदा का बंदा हूँ, आपके साथ यहाँ बैठी हुई आपकी छोटी बेटी है, आप उसके लिए दुआ करवाना चाहती हैं। इस छोटी बच्ची को हेमरेज की बीमारी है, और जब वो पुरजोश होती है या बहुत जोर से रोने लगती है, तो ये बीमारी इस पर हावी हो जाती है। ये खुदावंद यूं फरमाता है, ये छोटा लड़का उसका भाई है, ये सच है। और आप इस छोटे लड़के के लिए भी दुआ करवाना चाहती हैं। ये कब्ज से परेशान है, और हाल ही में इसका वजन भी बहुत कम हो गया है। क्या ये सच नहीं है? ये खुदावंद यूं फरमाता है। वो सफेद फार्म औरत जो आपके पास बैठी हुई है, लगता है कि वो किसी चीज से परेशान है। क्या आप ईमान रखती हैं बहन? आपको यकीन है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को गैर कौमों के सामने ये ऐलान करने के लिए भेजा है कि वो जल्द आने वाला है? आपको गुदूत की तकलीफ है जिससे आप परेशान हैं, और बड़ी आंत की तकलीफ है, और आप घबराहट का शिकार हैं। आप इस शहर की नहीं हैं, आप डिट्रॉइट से आई हैं। आपका नंबर जहां आप रहती हैं 12134 फेंडलर स्ट्रीट है, ये सच है। डिट्रॉइट मिशिगन से है, आप अतालवी हैं। आपका नाम वायला पोलो पोलंबा है। खुदा पर ईमान रखें, और जो कुछ भी आप चाहेंगी वो आपको मिल जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, उस तरफ नीचे की तरफ? क्या आप पूरे दिल से यकीन करते हैं? आपके बारे में क्या ख्याल है, जो औरत वहाँ बैठी हुई है, क्या आप अपने पूरे दिल से यकीन करती हैं? वो खातून जो आखिर में है, ठीक है, आप दोनों में से कोई ये बात बताए, कोई बात नहीं। आप जो बराबर में बैठी हुई है, आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान रखती हैं? ये माँ जो यहाँ बैठी हुई है, आप इसके मुतालिक क्या सोच रही हैं? क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदावंद यीशु आपकी सूखी नसों को शिफा दे सकता है? क्या आप रखती हैं? शायद आप ये सोच रही हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके शोर के कान में तकलीफ है, तो आप ज्यादा ईमान रखेंगी, आप उसके लिए दुआ करवाना चाहती हैं, ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, अब क्या आप मेरा यकीन करती हैं? आप पहले ये यकीन नहीं कर पा रही थी, और इस चीज ने आपको बेदार कर दिया था, क्योंकि आपने उसी घड़ी अपनी शिफा हासिल कर ली थी। खातून जो आपके बराबर है, आप अपना हाथ उठाएं। आप इसके मुतालिक क्या सोचती हैं? क्या आप ईमान रखती हैं खुदा आपको ठीक कर सकता है? क्या आप ठीक है, तो फिर आपका जोड़ों का दर्द आपको छोड़ देगा। क्या आप ईमान रख सकती हैं? जनाब, आपका क्या ख्याल है? वो जिसने अपने हाथों को बुलंद किया है, आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको आपके दिल की तकलीफ से शिफा दे सकता है, और आपको ठीक कर सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं वो ऐसा कर सकता है? आप जो वहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप भी ईमान रखते हैं? आप खुदा को चाहते हैं? आपके दिल के साथ भी मसला था, क्या ऐसा नहीं था? जी हाँ, और आपको ज़ियाबीतस है, ये सच है। क्या आप ईमान रखते हैं खुदा आपको शिफा याब कर सकता है? तो फिर आपने इसे हासिल कर लिया है। क्या आप ईमान नहीं रखते हैं? फक खुदा पर ईमान रखें। यहाँ नीचे क्या हो रहा है, आप जनाब जो आखिरी सीट पर बैठे हुए हैं, क्या आप ईमान रखते हैं? आपको जरूर ही रखना चाहिए, आपको शिफा मिल चुकी है। आपके पाँव के साथ मसला था, क्या ऐसा नहीं था? आप खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए भी दुआ कर रही हैं, पर वो आपका भाई है जो विस्कॉन्सिन में रहता है। उसका हाल ही में फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ है, उसका आधा हिस्सा निकाल दिया गया है। ये सच है, आप ईमान रखते हैं तो फिर आप जिस चीज को भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी।
हो
खुदावंद का नाम मुबारक हो।
Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed away each stain.
Mubarak Khudawand, हम तुझे किसी रोज आसमान से आते हुए देखेंगे। हम जानते हैं कि तू यहाँ एक रूहानी जिस्म में मौजूद है। तूने अपने आप को हमारे सामने साफ साफ जाहिर कर दिया है। खुदावन दुनिया इसे पढ़ नहीं सकती है और ना ही हम तवक्को करते हैं, क्योंकि तूने कहा है वो मुझे फिर ना देखेंगे। लेकिन हम जानते हैं तेरे कुछ बच्चे हैं जो तुझे देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो तुझे जानते हैं और हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और अब हम दुआ करते हैं क्योंकि तू इस इमारत की चारों तरफ छाया हुआ है उस अजीम रूह कुद्दस की सूरत में और हर एक बीमार शख्स को शिफा बख्श रहा है। अब खुदावन अपने आप को जलाल देने के लिए ऐसा होने दे। लोग मुर्दगी में ना रहें, बल्कि वो उठें और चमकें और खुदा की हमदो सना करें यीशु के नाम में। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने पूरे दिल से उसकी तारीफ करें और खुदावंद यीशु में शादमानी करें, क्योंकि वो अभी तक आप में से हर एक को शिफा दे रहा है। अपने इलाही जलाल की खातिर खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।